आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। आज यानी रविवार 21 जुलाई को एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी ताकि शुक्रवार 19 जुलाई को हुई वैश्विक आईटी आउटेज के प्रभावों को समझा जा सके। शुक्रवार दोपहर अचानक बैंक, एयरपोर्ट, सुपरमार्केट, मीडिया कंपनियां और खुले विक्रेता अचानक ठप पड़ गए जब साइबर सिक्योरिटी दिग्गज क्राउडस्ट्राइक के एक सॉफ्टवेयर अपडेट में गड़बड़ी आ गई। सरकारी एजेंसियों और प्रभावित उद्योगों के प्रतिनिधियों का समूह नेशनल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म अब इस आउटेज से हुए नुकसान की भरपाई पर चर्चा कर रहा है। सहायक ऊर्जा मंत्री जेनी मैकएलिस्टर ने स्काई न्यूज से कहा कि अब भी यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं फिर सुचारू हैं। उनका कहना था कि इस बात को समझने में कुछ वक्त लगेगा कि बीते दो दिनों में आखिर हुआ क्या है। वहीं आज दक्षिणी सिडनी में एक हृदय विदारक घटना में एक पुरुष और एक बच्ची की ट्रेन के ट्रैक पर गिरकर मृत्यु हो गई। कार्लटन रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी सर्विसेज को तब बुलाया गया जब एक प्रैम जिसमें दो बच्चे सवार थे प्लेटफॉर्म से ट्रेन की पटरियों पर गिर गया। इस हादसे में 2 साल की एक बच्ची और 40 वर्ष के एक पुरुष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दूसरी 2 वर्षीय बच्ची और एक 39 साल की महिला की पैरामेडिक्स द्वारा जांच की गई लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। हादसे के बाद T4 ट्रेन लाइन पर एक क्राइम सीन तय किया गया है और फिलहाल इस ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। वहीं विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलन का कहना है कि राज्य के निर्माण उद्योग में की जा रही एक स्वतंत्र समीक्षा उद्योग के सड़े गले हिस्से को काट फेंकने में सहायक होगी। ये तब आता है जब 9 अखबार ने ये उजागर किया था कि CFMEU के निर्माण विभाग पर घूसखोरी और व्यवस्थित अपराध से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। ये समीक्षा पूर्व न्याय विभाग सचिव ग्रेग विल्सन के अधीन होगी जो सरकारी एजेंसियों की ताकतों और ऐसे आरोपों से निपटने की क्षमता के बीच की दूरी और कठिनाइयों का आकलन करेंगे। प्रीमियर एलन को उम्मीद है कि इस समस्या का हल जल्द ही निकलेगा। वहीं बांग्लादेश में जारी छात्र आंदोलन की आंच ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आ रही है। बांग्लादेश में कोटा व्यवस्था के खिलाफ छात्र आंदोलन जारी है। ढाका की सड़कें मलबे और कटे हुए पेड़ों से पट गई हैं। शहर में आर्मी ने कर्फ्यू लगा दिया है और बीते सप्ताह में इस आंदोलन के चलते 114 जानें भी चली गई हैं। सिडनी में बांग्लादेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने लेकेम्बा क्षेत्र में एक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज किया। एक बांग्लादेशी ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर ने अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने नाम को गोपनीय रखा और कहा कि बांग्लादेश की कोटा व्यवस्था बेकार हो चुकी है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद पहली सार्वजनिक रैली में हिस्सा लिया जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकतंत्र के लिए गोली खाई थी। मिशिगन में इस रैली में ओहायो सेनेटर JD वांस भी उनके साथ शामिल रहे। वहीं अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी ट्रंप पर हुए हमले की जांच कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमलावर ने रैली शुरू होने के कुछ घंटों पहले की पूरे इलाके का ड्रोन से जायजा लिया था। 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने पेनिसिल्वेनिया की रैली में कई राउंड गोलियां चलाई थी जिसके प्रतिउत्तर में सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें मार गिराया था। FBI को क्रुक्स के घर से ड्रोन मिला है जिसकी जाँच अब जारी है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में उत्तर प्रदेश के बाद अब उज्जैन में भी दुकानदारों को अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नाम और मोबाइल नंबर लिखना होगा। उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल के अनुसार जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें जुर्माना भरना होगा। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का शनिवार को निर्देश दिया है। ये निर्देश उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए इसी तरह के आदेश के बाद आया है। उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि उल्लंघन करने वालों को पहली बार अपराध करने पर 2,000 रुपए और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। महापौर ने यह भी कहा कि इस आदेश का उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, न कि मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृहनगर उज्जैन अपने पवित्र महाकाल मंदिर के लिए जाना जाता है, जहां सावन के महीने में दुनिया भर से लोग और श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी के साथ 21 जुलाई 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वृषाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।